प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान प्रथुदास जी महाराज द्वारा विषय पिंडदान दिनांक 21 जून 2013 को नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में दिया गया है।
पिंडदान तो जब कोई किसी का अवसान होता है तो उनकी गति उनने जीवन में जो उनकी गति उनने बनाई, हमारा जीवन हम जीते हैं उनसे हमारी गति बनती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा है भी कि आखिर में भगवान कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम उनमें हमारी चेतना हो तो भगवान श्री कृष्ण हमें मिलते हैं, वो सही है। लेकिन फिर भी सारा जीवन हम जीते हैं तो इससे हमारा अगला जीवन पैदा होता है। अगला जीवन जैसे भक्त लोग सारा जीवन भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा अर्चना और आखिरी में उनको श्री कृष्ण का ध्यान नाम कुछ न भी हो कोमा में चले गए तो क्या भक्त का कल्याण नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, क्योंकि उनने सारे जीवन उनका अगला जीवन तैयार किया है। मनुष्य जीवन ये जवाबदारी उत्तरदायित्व का जीवन है। मनुष्य जीवन कुत्ते गधे जैसा जीवन नहीं है, जहां बुद्धि नहीं, हर चेतना नहीं और साधु संग नहीं, शास्त्रों का संग नहीं। मनुष्य को ये सब भगवान ने दिया है और दिया है इसलिए उत्तरदायित्व, इसलिए जवाबदार है। तो सवाल यह कि पिंड दान और पितृ, तो हम जो भी करते हैं उसके मुताबिक ऊर्ध्व गति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त्वा अधो गच्छन्ति तामशा जगन्न गुण मृत्यु से मध्य तिष्ठति राजसा। ये गतियां स्वर्ग नर्क अधो गच्छति तामशा, अधो नीचे वाले लोग पाताल लोग नर्क लोग, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्त्वा, भगवान कृष्ण कह रहे ऊर्ध्व गति स्वर्ग लोग, उससे आगे सारे लोग वैकुंठ लोग से गोलोक वृंदावन, ये गति है जाना, ऊर्ध्व गति अधो गति और राजसी लोग मध्य तिष्ठन्ति। तो जो हम मर जाते हैं, शरीर मर जाना मतलब हम नहीं मरते शरीर छोड़ते हैं, तब हमारी गति निश्चित होती है कि अभी ये शरीर छूट गया तो दूसरा जीवन हमारा क्या होगा। तो पितरों जो जो पाप कर्म किए हैं और जिनका कर्मों का हिसाब किताब करना है तो वो पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक में चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब किताब होता है। ऐसा नहीं समझना है कि वो हमारा सारी जिंदगी का कितने जीवों का हिसाब किताब रखता होगा, तो इतने सारे कंप्यूटर में हम अभी तो उससे भी सटल एनर्जी है कंप्यूटर, सटल यू नो कॉम्प्रेस्ड, तो उससे भी कॉम्प्रेस्ड शक्तियां हैं सटल एनर्जी। और चित्रगुप्त सब हिसाब किताब रखते हैं, जो तो चित्रगुप्त सेक्रेटरी है किसका, यमराज का। तो पितृलोक में तीन पीढ़ी वाले लोग रहते हैं, तीन पीढ़ी के सारे जीवात्माएं पितृलोक में रहते हैं और पितृलोक नरक के बिल्कुल पास है, तो उनके कर्मों के मुताबिक उनको वेतना उनको दुख उनको रिफॉर्म किया जाता है। क्योंकि मनुष्य ध्यान दो, मनुष्य जीवन में भगवान ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है, स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता हमें है और कोई छीन सकते नहीं। तो वो स्वतंत्रता का सदुपयोग दुरुपयोग, ये स्वतंत्रता है। तो इसीलिए ये माइनट स्वतंत्रता हमारे पास है, इसलिए हम जो भी करते हैं उनका उत्तरदायित्व, उनकी जवाबदारी हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण को शरणागत हैं, हमारी स्वतंत्रता कृष्ण गुरु को दे देते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व उन लोगों को रहता है, हम जो भी करते हैं। लेकिन सही ढंग से अगर हम शरणागत हो, तो जैसे छोटा बच्चा माँ को शरणागत है तो वो कुछ भी करेगा, गिर जाएगा, लगेगा चोट, तो उनकी उत्तरदायी माता को रहता है। पिता आएगा तो बच्चे को पिटाई नहीं करेगा, बच्चे को लगा क्यों लगा ऐसा, पिता आएगा तो क्या करेगा, तो क्या कर रही थी, है ना, क्योंकि बच्चा का स्वतंत्रता माता को देके रखी है ना। बच्चा स्वतंत्र नहीं है, वो भाग दौड़ अगर बाहर नहीं जा सकता रोड पर, स्वतंत्र नहीं है, माँ के पास उनकी स्वतंत्रता है, इसलिए माँ जवाबदार है। इसी तरह हमारी जो स्वतंत्रता है, ये हम रखते हैं, और हम स्वतंत्रता से अच्छे बुरे कार्य करते हैं, उनका उत्तरदायित्व, उनकी जवाबदारी हमें खुद को लेनी होती है। लेकिन जो शरणागत जीव अपनी स्वतंत्रता गुरु साधु कृष्ण को देके रखते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व कृष्ण साधु गुरु लेता है, उनको नहीं रहता। उसी तरह पितृलोक की बात हो रही है, पिंडदान, तो एक सिस्टम रखी शास्त्रों में कि अगर उनका पुत्र भगवान की भक्ति पिंडदान करे, पिंडदान करना मतलब भक्ति करना, कर्म कांड पिंडदान नहीं, पिंडदान का अर्थ है पहले जो भी हम पूजा करेंगे वो कृष्ण की करेंगे, पिंडदान में जो ब्राह्मण आपको पूजा करवाते हैं वो कृष्णा की पूजा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का सब कुछ। तो पिंड दान से जो हम भक्ति करते हैं वो हम हमारे पितरों को दे सकते हैं एक क्रिया से, और पितृ हमारे हम उनको डिलीवर कर सकते हैं, ये शास्त्रों का कथन है, गरुड़ पुराण, ये सब आपको जानना है, पितृलोक क्या है, नरक लोक क्या है, अपनी गतियां क्या है, जीव की गति, जीव कहाँ जाता है, कितनी देर कहाँ रहता है, जीव दूसरा शरीर उनको मिलता है उसके बीच में एक गैप में जीव क्या करता है, भूत कौन बनता है, भूत क्या है, भूत का अर्थ है कि जो आत्मा ये भौतिक शरीर के बिना हो तो उनको भूत कहते हैं, भौतिक शरीर के बिना, भौतिक शरीर के बिना जो जीवात्माएं भटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं, उधर उधर किसी के अंदर प्रवेश करते हैं, जीवात्मा एक शरीर में दो तो है, आत्मा और परमात्मा और तीसरा, तो वो शरीर अलग अलग एक्टिंग करता है, एक आत्मा का ये एक्टिंग, दूसरा आत्मा का दूसरा एक्टिंग, दो एक्टिंग हो जाती है, दो वो ये मनुष्य जिसमें भूत लगा है वो दो एक्टिंग करता है ना, एक करता है तो एक जीवात्मा कहता है वो एक्टिंग करता है वो शरीर, और दूसरा जीवात्मा कहता है वो भी एक्टिंग वो शरीर करता है, इसलिए हमें उनको भूत कहते हैं, भूत, उनको भूत लगा है, भूत लगा मतलब आत्मा, आत्मा कहीं भी प्रवेश कर सकता है, तो आत्मा की आसक्ति उनके बेटे में है, तो वो आत्मा हुवरिंग करते करते हुए तुरंत स्वर्ग नर्क या शरीर प्राप्त करने के बिना वो पुत्र पत्नी जिनमें वो आसक्त है उनमें वो प्रवेश करता है, तो उनको बोलते हैं भूत लगा। तो ये सही है, ये गांव की देहाती भाषा में उनको कहते हैं भूत लगा उनको, लेकिन उनका सही अर्थ है कि एक ही शरीर में दो आत्मा है, परमात्मा और एक आत्मा दूसरा आत्मा, दूसरा आत्मा घुस गया,
महाराज फिर ये जो बाबा लोग आत्मा निकालते हैं तो वो आत्मा निकली हुई दिखती है क्या उनको? जैसे अब भूत लग गया तो लोग लेके जाते हैं बाबा लोग?
वो ज्यादातर रहता नहीं, क्योंकि वो आत्मा ज्यादातर शरीर के बिना नहीं रह सकते। शरीर के बिना रहती है लेकिन उनकी गति आगे है, वो गति के लिए उनको भेजा जाता है तुरंत। इतना कोई ज्यादा भूत किसी का चलता नहीं है ना। वो आत्मा को भी आगे चलना है तो उनको फोर्स करके भी इन नर्क स्वर्ग अथवा जो उनकी गति हो उनका हिसाब किताब। तो ये सब बाबा लोग बाबू सब करते हैं, ठीक है, उनमें डिटेल में हमें नहीं जाना है। लेकिन ऐसा जरूर है कि भूत क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। गतिया मैं कुछ भी कहूँ, खरबजो हर जीव की गति अलग अलग है, हर जीव की गति अलग है। तो भूत कितना रहेगा, क्या करेगा, आपको सब कुछ बैठेगा इधर अथवा अंदर बैठेगा, कहाँ करेगा, आत्मा भूत। भूत का अर्थ है आत्मा शरीर के बिना, जो आत्मा है उनको भूत कहते हैं। आसक्ति, आसक्ति से वो जीव कई लोग होते हैं शरीर छोड़ने के समय वो किसी में आसक्त होते हैं, तो वो जब तक न हो तब तक वो शरीर में जबरदस्ती शरीर में रहता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुरंत उनको तो ये भूत है। अभी पिंड दान से उनकी मुक्ति हो सकती है क्योंकि ये शास्त्रों का कथन है और शास्त्र युक्त है पिंड दान। यस
मतलब सब कृष्णा के लिए करते हैं तो उसमें पिंडदान नहीं होता है क्या? उसके लिए स्पेशल दूसरा कुछ करना पड़ता है?
नहीं, अंत्य से संस्कार के पीछे एक क्रिया है पिंडदान करना, हर साल अर्थात 13 दिन तक पिंडदान करना, ये सब शास्त्रयुक्त क्रियाएं हैं जीव को सद्गति दिलाने के लिए। तो उससे आपकी भी सद्गति होगी, आप भी संस्कार पढ़ेंगे ना। ये गीता में पहले अध्याय में ही पिंडदान की बात की, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा तो सारे लोग मर जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, उनका संरक्षण हट जाएगा, संरक्षण हटने के लिए हट जाएगा तो वर्ण संकर प्रजा जन्म ली, वर्ण संकर प्रजा धर्म कुल नष्ट, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट होने पर लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड उदक पानी, पिंड उदक क्रिया लुप्त हो जाएगी तो मुझे पाप लगेगा। तो ये शास्त्र युक्त क्रिया है पिंड दान, तो उससे सदगति मिलती है।
श्राद्ध पक्ष करते हैं श्राद्ध क्रिया, वो क्या होता है?
यही पिंडदान, यही पुत्रों पितरों के लिए पितरों को सद्गति मिले, यही है। ओके, आगे चलते हैं, शरीर में आते हैं तो समझ में आया।
महाराज एक क्वेश्चन कि जैसे कि अगर किसी को भगवत सप्ताह करे और कथा सुनाए तो फिर उसकी मुक्ति हो सकती है प्रेत से?
बिल्कुल 100% भागवत जैसा जैसी कथा नहीं, और भागवत के महात्म्य में गोकर्ण की कथा आती है, तो सारी गांठ, एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ और बाद में उनकी मुक्ति। तो ये भागवत ये दिव्य कथा है, ट्रांसेंडेंटल त्रिगुणातीत कथा है। भागवत की कथा करने से हमारे पूर्वज को उनका फल मिलता ही मिलता है।
तो मान लीजिए हम, ये तो हिंदुओं में ये संस्कार, जो हिंदू नहीं है, जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उनका भी ऐसा वो कैसे?
उन लोगों का भी ये ऐसा फिलोसॉफी है, इसलिए वो कब्र में डांटते हैं और कब्र में रू फिर से दे विल राइज अगेन, जीसस क्राइस्ट विल कम एंड दे विल सो उनमें भी, उन लोगों में ये भी सब कॉन्सेप्ट है। लेकिन अवर वैदिक साहित्य इज बिग डिक्शनरी एंड देयर बाइबल इज लाइक ए स्मॉल डिक्शनरी, तो थोड़े मीनिंग वहां डिटेल में मीनिंग है और यहाँ संक्षिप्त में मीनिंग है, जरूर कंसेप्ट है। रूह, वो लोग रूह बोलते हैं, मुस्लिम लोग रूह बोलते हैं ना, रूह आत्मा। ओके, जो ब्रह्मचारी है और आप हो मैं हूं, हम हमारा खुद का कल्याण करके ही जाएंगे, और इतना ही नहीं हमारी आगे पीछे वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी कल्याण करके जाएंगे, उनका भी कल्याण करके जाएंगे। देवर्षि भूतात्म निणाम पितृणाम नायम किंक ना किंक करो नायम ऋणी च राजन, परीक्षित महाराज को कहते हैं ऋणी च राजन। सर्वात्मा यह शरणम गतव्यम गतो मुकुंदम परिहूर्त कर्तुम, जिन्होंने गोविंद भगवान कब कब की भक्ति की है तो उनके लिए किसी का ऋण अदा करने का कोई जरूरत नहीं, उन्हें आपो आप ऋण अदा कर लिया। देवर्षि देवों का ऋण, पितरों का ऋण, देवर्षि भूतात्म दूसरे प्राणियों का ऋण, भूतात्म निणाम राजा का ऋण, ना किंकर दास नौकरों का ऋण, ना किंकर ऋणी च राजन राजा का ऋण। ऐसा क्यों सबका ऋण ऋण उनने अदा क्यों कैसे कर लिया, क्योंकि सर्व के आत्मा गोविंद की इनने भक्ति की, तो गोविंद इज सब टोटल ऑफ एवरीथिंग। मूल में पानी डालो पत्ते को मिल गया, मूल का ऋण अदा कर लो सारे पेड़ का ऋण अदा हो गया। तो भक्त लोग को कोई चिंता उनके न पूर्वजों की चिंता न अपनी चिंता, क्योंकि मैंने कहा पहले शरणागत कृष्ण साधु गुरु को शरणागत है, इसलिए उनका उत्तरदायित्व कौन लेता है, भगवान लेते हैं। गुरु भी साधु भी भगवान को शरणागत है, लेकिन गुरु के ओ मैं थोड़ा पैसा बटोर लूं, शिष्य बटोर लूं, मेरी ख्याति बढ़ जाए, मैं बड़ा और ये, तो वो इम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि उन शरणागत नहीं है। मैं तो उनका उनको भोगना पड़ेगा। तो भगवान को जो शरणागत है उनकी जवाबदारी भगवान लेते हैं और लेनी पड़ेगी भगवान को, क्योंकि भगवान पर वो न्योछावर शरणागत। ओके, सेम थिंग विद शरीर में आते हैं जाते हैं, और देवी देवी का संचार होता है तो यही देवी का संचार होता है, ठीक है, वो इन्वोक कर सकते हैं, यू नो मिस्टिसिज्म और देवी और सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब मलिन देवी देवताएं बोलते हैं उनको, मलिन देवी देवताएं, और उनके भक्त भी मलिन, और ये सब मैस मैनेजम मलिन देवता है बोलते हैं। दिव्य हमारा जो प्रोसेस है, दिव्य कृष्ण भगवान दिव्य है, गुणों में तीन गुणों में नहीं है, ये देवी देवता है गुण में, तो ये होता है लेकिन हमें उनमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन है सही, ये सही है, क्योंकि सटल विज्ञान है ये, सटल सूक्ष्म, यू नो ये सूक्ष्म जैसे विज्ञान है, ठीक है।
वो कौन सी देवी है जो आती है, वो
देवी? दुर्गा देवी, अंबा देवी, और वो भी त्रिगुणमयी है, दुर्गा देवी भी त्रिगुणमयी है, देवी ऐसा गुणमयी नम माया दुरत्या, दुर्गा देवी ये माया देवी है, पार्वती है, भौतिक जगत में शंकर भगवान की पत्नी पार्वती दुर्गा देवी ये त्रिगुणमयी है, इसलिए मलिन देवताएं कहे, शनि और शनि की उपासक करते हैं, बाबा बापू की उपासना, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, बाबा शिरडी चलो शिरडी खाने, सब चलता है, लेकिन इनसे हम वैष्णवों को कोई मतलब नहीं है। वैष्णवों को मतलब है कृष्ण से, जो तीन गुणों से पर है, आध्यात्मिक है, हमें दिव्य है, और देव देव जगत पते, देवों के देवों के देवादि देव, देव देव जगत पते, देव आदि देव, अहम ही आदि आदि देवानाम, कृष्ण विष्णु। गोलोक वृंदावन का वर्णन कीजिए, हमने कई कुछ वर्णन कर ही दिया है। तो गोलोक वृंदावन, ये गोलोक वृंदावन ये भगवान का घर है, उनका उनका घर। तो गोलोक वृंदावन में कई वर्णन है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो गोलोक वृंदावन ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ जड़ जगत का वो सत चित आनंद सच्चिदानंद चिन्मय भूमि है, टच स्टोन चिंतामणि से बना हुआ, और उनकी रचना करते हैं संकर्षण, जो पहला संकर्षण हमने कृष्णा बलराम चतुर्युग संकर्षण, ये संकर्षण संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, ये चतुर्व्यू सारा गोलोक वृंदावन का मैनेजमेंट करते हैं। तो चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मई वन चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेर मई दिव्य चक्षु देखे तार तार स्वरूप प्रकाश गोप गोपी संगे कृष्ण कलर विलास। सो लेट्स गो बैक टू ओरिजिनल फर्स्ट श्लोक, दिस इज भौम वृंदावन का वर्णन है। तो ओरिजिनल श्लोक चिंतामणि भूमि, सो चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, और वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है। हमने कुछ कल्पना की मुझे करना है तुरंत हो जाएगा, और वो कल्प एक कल्प वृक्ष में जो भी फल आपको चाहिए वही एक कल्प वृक्ष से आपको खरबूजा मिल सकता है, एप्पल मिल सकता है, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी ब्लैकबेरी ऑलबेरी फ्रॉम सेम वृक्ष कल्प वृक्ष। कल्पना की तुरंत हमें वो फल मिल गया, मैं ब्लैकबेरी ब्लूबेरी भगवान को आज भोग लगाऊं ले जाऊं, मुझे आज पारिजात का फूल चाहिए भगवान की सुंदर माला बनाऊं, वैजंती माला के पांच प्रकार के फूल चाहिए भगवान के, तो इच्छा होती है, लेकिन दिव्य इच्छा होती है, दिव्य इच्छा है, भगवान की सेवा की इच्छा है, अपनी लिए अपने लिए कोई इच्छा नहीं, लेकिन भगवान को खुश करने की इच्छाएं होती है। तो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, और वहां गाय गाय भगवान गाय चराते हैं, सुरभि गायें अनलिमिटेड दूध देती है, अनलिमिटेड दूध, और वो गाय सबको सुख देती है, भगवान को भी सुख देती है। तो सुरभि अभिपालयंतम पालन करते हैं भगवान कृष्ण सुरभि गायों का, सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेव्यमानम, और वहां की सब स्त्रियां गोपियां हैं लक्ष्मियां हैं अर्थात गोपी, सब स्त्री गोलोक वृंदावन में सब स्त्री क्या है गोपी। गोपी की परिभाषा क्या है कि तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम, भगवान के आन खुशी में अपनी खुशी और भगवान के दुख में अपना दुख, ये गोपी है। गोपी की परिभाषा क्या है, विश्रम बिनी अपने से दूसरों पर ज्यादा विश्वास ज्यादा प्रेम, दूसरों पे अपने से ज्यादा विश्वास और ज्यादा प्रेम, विश्रम बिनी, और समवयस्क 16 साल भगवान जैसी उम्र, और ड्रेस सेम ड्रेस, अर्थात कलर अलग अलग, लेकिन ऐसा ना किसी ने पंजाबी पहना है और किसी ने गुजराती पहना है और किसी ने साउथ इंडियन मराठी पहना है, कच्चा पहना है, ऐसा नहीं। गोपी गोपी ड्रेस, तो परिधान सेम, उम्र सेम और सुंदरता पर ऑलमोस्ट सेम, लगती है अलग अलग लेकिन सुंदरता में है समान। और जो भी वो पहनती है और गहने पहनती है, परिधान वस्त्र पहनती है, सब कुछ पहनती है, वो कृष्ण का ध्यान अपनी ओर, कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, औरों को आकर्षित करने के लिए, अर्थात अपने शौक शौक के लिए नहीं कि मैं सुंदर लग रही हूं, नहीं, भगवान कृष्ण को आनंद मिले, इसी तरह वो श्रृंगार करती है वहां। तो सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सतसम, वहां की सब स्त्रियां लक्ष्मिया है। और ये लक्ष्मिया गोपी, ये गोपी हाँ लक्ष्मिया है, तो वो सब श्री कृष्ण की ही है, वह पराकीय रस नहीं है, स्वकीय रस। स्वकीय का अर्थ है मैं कृष्ण की हूं और सब कृष्ण की है, और सब कृष्ण की है, तो यहाँ कृष्ण कृष्ण के साथ पास उनका एकत्व होता है, वहां मिलती है, यहाँ नहीं मिलती, मतलब झगड़ा नहीं है, सबका मिलन है कृष्ण में, एक दूसरे में कॉम्पिटिशन, इसलिए एक दूसरे से ज्यादा प्यार। सखी की परिभाषा उज्जवल नीलामणि, क्या परिभाषा सखी की, कि अपने से दूसरों पर ज्यादा विश्वास और ज्यादा प्यार, और समवयस्क है और उम्र सम, तो ये सखी, यस
उसमें भी राइट विंग और लेफ्ट विंग सखी,
यस
कॉम्पिटिशन तो हुआ ना,
तो कॉम्पिटिशन है लेकिन कृष्ण को खुश करने के लिए, और कॉम्पिटिशन है लेकिन जब दुख आता है तो वो कॉम्पिटिशन मिट जाती है और सब एक हो जाते हैं। जैसे कि रास डांस जब हुआ वृंदावन में, यहाँ पृथ्वी पर धरातल पर वृंदावन में जब रास डांस हुआ तो भगवान अदृश्य हो गए, तो राइट विंग गोपी और लेफ्ट विंग गोपी वो द्वेष नहीं, वो सब मिलके गोपी गीत गा रही है और सब मिलके एक दूसरों का दुख का भागीदार होती है। ऐसा नहीं मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं चंद्रवाली अभराधरण की और दूसरा कैंप है जाने दो, ऐसा नहीं, सब एक मिल गई है ना। तो उनका कंपटीशन भी अगर है और लेफ्ट विंग राग राइट विंग यू नो दक्षिणा गोपी है, दक्षिणा चर्चा आपको गोलोक वृंदावन का विषय ले लिया, ओके तो लेफ्ट विंग दक्षिणा, अने दूसरी दूसरी है लेफ्ट विंग ओके, राइट विंग गोपी, दक्षिण वामा, वामा एंड दक्षिणा। सो दक्षिणा का सर दक्षिणा जो चंद्रावली का कैंप है, so दक्षिणा कहते हैं।
मतलब आपने जो बताया कि अभी यहाँ पर स्वकीय भाव है, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है कि वृंदावन का जो भाव है वो परकीय भाव है, और जो द्वारका में जो रानिया है कृष्ण की वो
स्वकीय
स्वकीय भाव है, तो गोलोक वृंदावन में फिर स्वकीय भाव है।
गोलोक वृंदावन में कई लोग मत अलग अलग करते हैं, लेकिन मैं जो जानता हूँ तो वृंदावन में खाली स्वकीय ही है, सब उनकी ही है, वहाँ पराकीय भाव नहीं है। पराकीय भाव तो भाव का अर्थ है कि वो किसी को ब्याही है और कृष्ण से प्यार कर, पर पुरुष से, पराकीय भाव पर पुरुष से वो प्रेम कर रही है, तो वहां तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, सब कृष्ण की ही है, कृष्ण को ही ब्याही है, जो भी ब्याही ना ब्याही अलग बात है, लेकिन है सब कृष्ण की, इसलिए स्वकीय भाव है। ये स्वकीय का अर्थ है जो स्त्री पाणी ग्रहण करती है, वैदिक रीति जो स्त्री
पाणी ग्रहण की वैदिक रीति अनुसार प्राप्त हो, पति की आज्ञा का बलि भांति पालन करने वाली हो और पतिव्रता धर्म से कभी विचलित न हो। रस शास्त्र में उसे स्वकिया कहते हैं। ये स्वकिया और परिकिया, पराकिया किसे कहते हैं? रस शास्त्र में पराकिया किसको कहते हैं? स्वकिया पहले से पढ़ो फिर से। स्वकिया जो स्त्री पाणी ग्रहण की वैदिक रीति अनुसार प्राप्त हो, पति की आज्ञा का भली भांति पालन करने वाली हो, पतिव्रता धर्म से कभी विचलित न हो, रस शास्त्र में उसे स्वकिया कहते हैं। स्वकिया और पराकिया किसे कहते हैं? जो नायिकाएं ऐहिक और पार्त्रिक धर्म की उपेक्षा कर के, अर्थात कोई भी धर्म पर सब धर्मों को छोड़ छाड़ के ऐहिक और पार्त्रिक धर्म की उपेक्षा कर केवल मात्र आसक्तिवश पर पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण करती है, जो स्वकीय नहीं है उनको रस शास्त्र में पराकीय कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। उज्ज्वल नीलामणि,
महाराज ये बराबर है ना कि वो गोपिया सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास जाती थी, तो वो कुछ नहीं केयर करती थी कि हमारा अभी क्या होगा।
यस,
मतलब कि वो कुछ भी नहीं सोचती थी, वो सिर्फ इतना सोचती थी कि मुझे कृष्ण के पास जाना है। तो इधर घर का क्या होगा,
बाबा वापस आने के नहीं सुधार
यानी सब गुण रहस्य वाला ये सारा शास्त्र है।
पर महाराज ब्रह्म विमोहन लीला में श्री कृष्ण के साथ उनका
विवाह, ये सब नीटी ग्रिटी, आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच इन अ डिटेल, बट यू कैन गो इनटू डिटेल बाय सद्गोस्वामी लिटरेचर, यू कैन रीड दैट, बट फॉर बेसिक्स स्वकिया पराकिया और यू नो कृष्ण वल्लभाए और लेफ्ट विंग राइट विंग ऑल दिस इज इन उज्ज्वल नीलामणि, जो भक्ति रसामृत सिंधु के बाद का ग्रंथ, एक ही ग्रंथ है दोनों, ये दोनों एक ही है लेकिन अलग कर दिए। तो उज्ज्वल नीलामणि में ये सब वर्णन है। तो व्रज की गोपियां के चार भेद हैं, तो स्वपक्ष, श्रुत पक्ष, तथस्थ पक्ष एंड विपक्ष। वामा गोपी किसे कहते हैं? उनकी परिभाषा उज्ज्वल नीलामणि अगेन, मान ग्रहे सदो द्युक्ता तच्छैदित लेच कोपना अभेद्या नायके प्राय क्रूरा वामेति कीर्त्यते। जो नायिका मान ग्रहण करने में सदा एष्टा करती है, अर्थात मान ग्रहण गुस्सा, अंदर से प्रेम और बाहर से गुस्सा, तो उनको मान कहते हैं। जो नायिका मान ग्रहण करने में सदा एष्टा करती है, मान में शिथिलता होने पर क्रोध करती है, जो नायक के प्रति कठोर रहती है, उसको रस शास्त्र में वामा कहते हैं। वामा हाँ, राधा रानी का सारा कैंप, राधा रानी एंड राधा रानी का सारा कैंप ये वामा है। और दक्षिणा गोपी किसे कहते हैं? असहा मान निर्बंधे नायके युक्त वादिनी साम भी स्तेन वेद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता। जो नायिका मान करने में असमर्थ है, कभी भी मान नहीं, जैसे कृष्ण कहते हैं कृष्ण की हा में हा, तो जो नायिका मान करने में असमर्थ होती है और नायक के प्रति प्रिय वचनों का प्रयोग करती है, राधा रानी कटु वचन बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन जो दक्षिणा गोपी है तो भगवान को कटु वचन कभी नहीं कहती, तो प्रिय वचन हमेशा बोलती है और नायक के प्रीतिपूर्वक वचनों से प्रसन्न हो जाती है। भगवान प्रीति पूर्वक जो भी बोलते हैं तो उनसे प्रसन्न हो जाते, चाहे उनका खराब हो, उनका गोपी का खराब हो या अच्छा, लेकिन प्रसन्न हो जाती है। तो इनको दक्षिणा गोपी कहते हैं। एनीवे, तो आप हमारा ओरिजिनल विषय था गोलोक, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन एक धाम छे भक्तों के लिए नहीं, भगवान जहाँ है वहाँ ही भक्तों का, भक्त भगवान के बिना नहीं, भगवान भक्तों के बिना नहीं रह सकते, ये दोनों का यू नो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं कि हूँ तो वैष्णव, ये नरसिंह मेहता गाय, हूँ तो वैष्णव थी क्षण नहीं गो बण नरसयो ए पद साचूरे हे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला अरनी सेने गौरे। सो भगवान अने भक्त आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। गोप स्त्री परिवेष्ट तो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपाल ये गोप स्त्री से परिवेष्टित रहते हैं, गोपियों से घेरे हुए परिवेष्टित। तो भगवान और भक्त कभी अलग नहीं हो सकते, और इसी इससे ही तो गोलोक वृंदावन बनता है। भगवान अकेले से गोलोक वृंदावन नहीं बनता, भक्तों के साथ। तो चिंतामणि भूमि, तो ये जो हमारा गोलोक वृंदावन में, और दूसरा श्लोक क्या है, दूसरा श्लोक क्या है, चिंतामणि प्रकर्षण सुकल पर, और बाद में क्या है, वैणम कनवंतम अरविंद दलयताक्षम बरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो गोलोक वृंदावन का वर्णन है। तो गोलोक वृंदावन में सच्चिदानंद, या सच्चिदानंद ये धाम, सच्चिदानंद धाम है, वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वैकुंठ, कुंठ मीन्स दुख, वैकुंठ। और गोलोक वृंदावन में यहाँ जो भी चीज है वो वहां है, लेकिन उनका विकार नहीं है। जैसे जैसे कोई भी हमें यहाँ जैसे गुस्सा करना, तो यहाँ जब गुस्सा करते हैं तो दोनों, जो गुस्सा करता है वो भी नरक में, और जो जिसके पर गुस्सा करता है वो भी नरक में। लेकिन वहां गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा प्रेम जागृत करता है, प्रेम जागृत करता है। जैसे राधा रानी मान में जाती हैं तो भगवान उनसे रूठ नहीं जाते, भगवान उनको मनाते हैं, मनाते हैं। और प्रेम, प्रेम की तीव्रता और बढ़ जाती है मान में, प्रेम की तीव्रता और बढ़ जाती है। तो यहाँ भी गुस्सा है, वहां भी गुस्सा है, लेकिन यहाँ का गुस्सा नरक में ले जाता है, वहां का गुस्सा प्रेम पैदा करता है। तो सब चीजें, जो भी चीज यहाँ है वहां है, खाली एक चीज वहां नहीं है जो यहाँ है, वो है द्वेष या मत्सरता या तो एनवी, एनवी। और अगर वहां एनवी है फिर भी है, तो वहां की एनवी स्पर्धा करवाती है कि भगवान की सेवा, भगवान में कौन ज्यादा प्रेम जागृत करता है। तो दोनों में कोई संघर्ष नहीं है, दोनों भगवान में ज्यादा प्रेम जागृत मेरे लिए हो ऐसा प्रयत्न करने में लगे, एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं लगे, क्लासेस में नहीं लगे। तो गोलोक वृंदावन, तो गोलोक वृंदावन और जो वैकुंठ लोग हैं, वैकुंठ लोग ये भौम वृंदावन, भौम वृंदावन का अंश है, अंश अंशम, ये पद्म पुराण में श्लोक है।
पॉपुलेशन कितना होगा?
अनलिमिटेड अनलिमिटेड भगवान का सब कुछ अनलिमिटेड है, कुछ लिमिटेड नहीं। भव वृंदावन मथुरा इंडिया ये वृंदावन, आप भूम वृंदावन को मृत्यु लोक का हिस्सा समझते हो, समझे ना? लेकिन ये जो मथुरा वृंदावन है ये पृथ्वी का या भौतिक जगत का अंश नहीं है। ये पद्म पुराण 69 चैप्टर पाताल खंड 69 8.9 पद्म पुराण जो सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण पाताल खंड 69 8.9 तो ये सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में ये भूम वृंदावन का वर्णन करते हुए एक कोट करते हैं श्लोक कि नित्य वृंदावनम नाम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम पूर्ण ब्रह्म सुख ऐश्वर्यम नित्यम आनंदम अव्ययम वैकुंठ आदि तद अंश अंशम स्वयं वृंदावन भुवि। भुवि भूमि पर जो स्वयं वृंदावन है वो नित्य वृंदावनम नाम ब्रह्मांड परि संस्थितम, ये ब्रह्मांड में जो वृंदावन है वो पूर्ण ब्रह्म सुख ऐश्वर्यम नित्यम आनंदम अव्ययम, ये पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के सुख के लिए ये धाम है वृंदावन धाम पृथ्वी पर। अने ये वैकुंठ आदि उनके अंश अंशम, वैकुंठ आदि उनके अंश के अंश है, वैकुंठ आदि धाम ये भूम वृंदावन के अंश है, स्वयं वृंदावन भूमि तो धाम ऐश्वर्य। तो जेव रीते भगवान के अनंत अवतार है उसी तरह धाम के भी अनंत विस्तार है, तो सारे सृष्टि में कई धाम है भगवान के। पृथ्वी पर ही द्वारिका धाम अयोध्या धाम और वहां भी भगवान मूर्ति रूप में मौजूद हो जगन्नाथ, और मायपुर में हरिधाम मायपुर, तो हरि के रूप में भगवान गौर हरि के रूप में, तो सब भगवान के अनंत धाम है। इसे तो ये धाम भगवान से पृथक नहीं है, चित्त शक्ति का प्रभाव है। धाम है चित्त शक्ति, भगवान की चित्त शक्ति स्पिरिचुअल शक्ति से भगवान के धाम बनते हैं, और घनीभूत आधार शक्ति वृत्ति भगवान का धाम है। भगवान के रूप अनंत है उसी प्रकार उनके धाम भी अनंत है, भगवान के रूप अनंत उसी तरह उनके धाम भी अनंत है। भगवान के रूप प्राकृत जैसा लगता है वैसे धाम भी प्राकृत जैसा लगता है। जैसे कृष्ण भगवान को कई लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे जैसे मनुष्य हैं, और हमारा जैसा शरीर है वैसा उनका शरीर है, हमारा शरीर मर जाता है तो उनका शरीर भी मर जाता है। लोग ऐसा, पंडित लोग भी ऐसा, यू नो, उल्टा सुल्टा। लेकिन भागवत में लिखा है 12वें कांतों में कि स्वतनु अपने शरीर के साथ भगवान स्वतनु वापस अपने धाम में गए। ऐसा नहीं कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया और भगवान चले गए, और भगवान ने अगर शरीर छोड़ा था तो दूसरी जो रानियां थी और दूसरे जो यादव थे तो उनकी रानियां सती हुई उनके पति के शव के साथ, लेकिन भगवान कृष्ण की रानियां सती हुई ऐसा नहीं लिखा है। और ये भी लिखा है कि भगवान स्वर्ग होते हुए अपने धाम में गए। इसका अर्थ है कि अगर भगवान अपने शरीर के साथ नहीं गए होते तो देवी देवता उनको महसूस कैसे करते और स्वर्ग में उनका उत्सव पूजा की वगैरह उत्सव मनाया तो कैसे मनाया। तो भगवान का धाम, भगवान का धाम भी हमें भौतिक लगता है, जैसे भगवान का शरीर हमें भौतिक लगता है, तो भगवान का धाम दिव्य है। भगवान का वृंदावन धाम भी दिव्य है। तो इसीलिए ये श्लोक है, हमारे गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मय वन चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश गोप गोपी संगे जहर कृष्णार विलास। तो चर्म चक्षु, भौतिक चक्षु से हम देखते हैं तो भगवान का धाम हमें प्रपंचमय लगता है। प्रपंच मतलब पांच, पृथ्वी जल तेज आसु वायु आकाश का गंदा लगता है और कई सब कुछ लगता है। प्रपंच रमय दिव्य दृष्टि देखे तार स्वरूप प्रकाश, हम जब दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो वृंदावन हमें उनका ओरिजिनल स्वरूप हमें दर्शन होते हैं। जैसे अकबर बादशाह जीव गोस्वामी को मिलने गए वृंदावन में तो कहते हैं मैं क्या सेवा करूं, वृंदावन की सेवा क्या करूं, तो बोलते हैं आप क्या सेवा करोगे, कोई सेवा करनी नहीं, नहीं मैं करना चाहता हूं। तो बोले कि कैसी घाट का ये पत्थर टूट गया थोड़ा सा इतना, तो ये पत्थर को रिपेयर करवा दो। तो जब उनको दिव्य दृष्टि दी अकबर को जीव गोस्वामी ने, तो उनने देखा ये तो हीरा मोती जवेरा सब कुछ आध्यात्मिक दिव्य दिव्य धाम का दर्शन करवाया। तो बोलते हैं मेरा सारा राज्य भी लुटा दो फिर भी ये नहीं रिपेयर हो सकता। तो ऐसी दिव्य दृष्टि देखे तार स्वरूप प्रकाश, धाम का स्वरूप ओरिजिनल जो है वो हमें प्रकाशित हो सकता है, स्वरूप प्रकाश। तो ये गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन का वर्णन करते रहेंगे हम जैसे आएंगे। लेकिन एक वस्तु है कि गोलोक वृंदावन में यहाँ का विकार नहीं है, वहां सब कुछ है जो यहाँ है, पति पत्नी बच्चे सब कुछ वहां, लेकिन बच्चों का जन्म नहीं है वहां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कोई बच्चों को जन्म देना नहीं है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां सास नहीं है और वहां पति है कृष्णा, और अर्थात वहां विकार नहीं है, विकार नेगेटिव कुछ नहीं, एवरीथिंग ब्लिस में, सब कुछ आनंदमय आनंदमय आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, कोई प्रकार का दुख नहीं, वैकुंठ कुंठ नो कुंठ वैकुंठ, ये गोलोक वृंदावन है। और सुंदर बगीचे मैंने थोड़ा सा वर्णन किया था, और पर्वत आजू बाजू में और पंखुड़िया गोपियों का ग्वालों का सारा विस्तार, ये कमल जैसा हजार पंखुड़िया का कमल जैसा उनका विस्तार है, और बीच में वर्ल्ड गोलोक वृंदावन है, बीच में जो येलो वर्ल्ड होता है। तो ये है गोलोक वृंदावन का छोटा सा वर्णन। तो भगवान अनंत है और भक्त भी अनंत है, और वन टू वन बेसिस पर भगवान हर भक्त के साथ संबंध रखते हैं, वन टू वन बेसिस। तो कथा को विराम देंगे, हरे कृष्ण।